कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 143। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धे शुद्धात्मने नमः। प्रणामो हरिहन्ताणं,
नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं, त्रिभुवनतिलकं वन्दित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं, वक्षे अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी।
यह कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में हम अभी धर्म भावना को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम 36 नंबर के पृष्ठ पर आए हैं और यहाँ हमने 310 नंबर की जो गाथा है, जिसमें ये चार बातें होती हैं, कौन कौन सी? औपशमिक सम्यक्त्व, शावशमिक सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी का विसंयोजन और देशव्रत। ये सबको यह जीव कितनी बार उसको ग्रहण करे और उसका कितनी बार छूट जाए, यानी प्रथमोपशम जो उपशम है वो कितनी बार छूट सकता है, आपको मालूम है? बोलो 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 बोलो, असंख्यात बार। और देशव्रत वह भी असंख्यात बार, और विसंयोजन अनंतानुबंधी का विसंयोजन वह भी असंख्यात बार यह जीव कर सकता है। सभी करेंगे ऐसी बात नहीं है, सभी जीव उपशम सम्यक्त्व से या क्षोपशम सम्यक्त्व से छूट कर नीचे गिर जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं चाहिए किसको, तो किसी का हो जा सकता है, होता है तो इतनी बार होता है, ये बात को हम देखते थे। अब ये देखते हुए भावार्थ कल पढ़ रहे थे, वहाँ पल्यना असंख्यात्मा भाग प्रमाण जे असंख्या छे तेटली वार, उत्कृष्टपने ऊपरना चारे ने आ जीव ग्रहण करे तथा छोड़े छे अने पछी मुक्ति प्राप्त थाय छे। ये अगर आपको समझाना है तो पाटी आपको दिया है, असंख्यात बार पल्ल का कैसा गिरता है, क्या गिरता है, क्षोपशम के लिए कितना टाइम लगता है, वो बताना था ना कल आपको, नहीं बताने तो आगे बढ़ेंगे। यह देखो, जैसा सम्यक तो हो जाता है किसी जीव को, जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है उसको पहले में पहले जो कोई सम्यक तो होगा और नियम से औपशमिक सम्यक तो होगा। उस औपशमिक सम्यक तो में हमने देखा था कि जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है वह पांच प्रकृतियों का उपशम करता है, बाद में वो दोबारा फिर उपशम करेगा, उसके लिए कितना टाइम लगता है ये बात आपको थोड़ा सा आलेख करके बता रहे हैं।
देखो, जब जीव मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्यात्व में आता है तो अनंतानुबंधी का तो उदय है, सत्ता में भी है, उसकी तो बात नहीं है, परंतु अन्य प्रकृतियों में क्या होता है तो मिथ्यात्व अभी नया बंध शुरू हो जाता है, तो मिथ्यात्व प्रकृति तो उसके निषेक ज्यादा हो जाएगी, परंतु सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व जो है, जो सम्यक दृष्टि था उसके वो दो प्रकृति और तैयार हुई थी, मिथ्यात्व में आता है तो ये अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण उनकी स्थिति रहती है। अंत कोड़ाकोड़ी किया था ना, जब सम्यक दृष्टि था तो ये सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व है, जैसे मिथ्यात्व भी वहां पर अंत कोड़ाकोड़ी था और ये दो उसमें से बनी है वो भी अंत कोड़ाकोड़ी थे।
ये अंत कोड़ाकोड़ी सागर है ना,
अंत कोड़ाकोड़ी सागर,
वो ध्यान रखना,
इसका अर्थ होता है करोड़ गुना करोड़ सागर से छोटा काल, उसको कहेंगे अंत कोड़ाकोड़ी सागर। ऐसा जो मिथ्यात्व में आता है तो अभी वो नया बंध करेगा अधिक वाला, तो वो कितने भी हो सकता है ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कितना भी हो सकता है। एक अंतर्मूर्त तो बीत जाता है मिथ्यात्व में आने पर, तभी उद्वेलना शुरू होती है। उद्वेलना करते ये सम्यक प्रकृति है और सम्यक मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व में उल्टा संक्रमण होता है, उसको कहते उद्वेलना। तो ये प्रोसेस लंबे काल तक चलता है। ये पूरी जितनी सत्ता में पड़ी है उतने का सारा ट्रांसफर होने के लिए पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल लगता है। स्थिति बहुत ज्यादा है, अनेक सागर वर्षों की है, अनेक सागर वर्षों की स्थिति पल्ले के असंख्यातवे भाग काल में ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं कि जितने समयों की स्थिति है उतना समय नहीं लगता ट्रांसफर होने के लिए, बहुत उसके कंपैरिजन में बहुत अल्प काल लगता है। तो अभी कितने ही काल तक, मान लेते इतने काल तक, यहां से लेकर यहां तक, यानी करीबन हमने देखा ना अंत कोड़ा कोड़ी सागर इतनी स्थिति थी, उसमें से करीब एक सागर के आसपास इतनी स्थिति बाकी रहती है, उसके पहले पहले की बात कर रहे हैं। तो यहां कहीं पर भी उसको सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा होगा, तो वेदक सम्यक तो होता है, उसको कहते हैं वेदक योग्य काल। इसके पश्चात अगर सम्यक तो होता है तो इन दोनों की स्थिति तो अल्प है, और मिथ्यात्व की यथा योग्य जितनी वहां बंद हो रहा है अधिक वगैरह उतनी है। अब यहां पर उपशम सम्यक तो हो सकता है, उसके पहले नहीं। तो यहां पर अगर उपशम करना है तो तीनों ही प्रकृतियां हैं दर्शन मोह की, तो तीनों में ही वो गैप करके फिर उसका उपशम किया जाएगा। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि ने एक मिथ्या तो प्रकृति में गैप किया था, गैप किया था ना, क्या मान लेते ये मिथ्या तो प्रकृति है, जब वो अनिवृत्तिकरण में आता है तो उसके बीच के कितने ही निषेकों में गैप होती है, अंतर किया जाता है, अंतरकरण।
यानी वहाँ क्या होता है कि वो बीच के जो परमाणु है या तो ऊपर चले जाते हैं या तो जल्दी उदय में आते हैं,
कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे आते हैं। अब नीचे आने वाले क्रम से एक एक समय में थोड़े थोड़े उदय में आते जाएंगे, और बाय दैट टाइम जितना यहाँ उदय एक एक समय का चलेगा, बाय दैट टाइम ऊपर के सभी परमाणुओं को उपशमित किया जाता है। उपशमित किया नहीं, अपनी जगह छोड़कर नीचे नहीं आ सकते, ऐसा किया जाता है, यानी लॉक किया है उसको अंतर्मूर्त के लिए। और ये नीचे के एक 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 करके नीचे खिरेगा, जब गैप वाला समय आएगा तो यहाँ कोई मिथ्यात्व के परमाणु नहीं है उदय रूप, और यहाँ जीव के भावों में भी मिथ्यात्व नहीं है, तो यहाँ उसके उपशमित सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। अंतर्मूर्त तक ये उपशमित परमाणु कोई नीचे नहीं आ सकते, परंतु मिथ्यात्व का जो उपशम हुआ है उसी में से तीन प्रकृतियां तैयार होती है। एक तो मूल मिथ्यात्व की है, उसका अनुभाग घटकर सम्यक मिथ्यात्व हुआ, कुछ परमाणुओं का अनुभाग और घटा और उसमें से सम्यक प्रकृति हुई, तो एक के बदले यहाँ पर तीन प्रकृतियां तैयार हुई। हाँ, तो ये तीन प्रकृतियां जो तैयार हुई है, अब ऐसा जीव उसका सम्यक तो बना रहेगा, तो सम्यक प्रकृति का उदय है और ये दो प्रकृतियां ऊपर है, एक समय ऊपर है, उसका उदय नहीं है। तीसरे गुणस्थान में जाएगा तो ये बीच वाली सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, बाकी दो प्रकृतियों का उदय नहीं है। और यदि वो जीव मिथ्यात्व में जाता है तो मिथ्यात्व का उदय है, बाकी दो अंदर पड़ी है। तो ऐसा जीव अगर मिथ्यात्व में आता है तो अभी मिथ्यात्व का नया बंध भी होगा। अभी संगी पंचेंद्रिय जीव है, सम्यक्त्व में से अभी अभी मिथ्यात्व में आया है, तो उसका तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण या अधिक भी बंध होगा, तो वहां यथा योग्य बंद होगा, तो अभी उसको फिर दोबारा प्राप्त होगा तो वेदक सम्यक्त होगा। वो अभी अभी हमने देखा ना, लंबे काल तक उसको वेदक सम्यक्त के योग्य ही काल है, बाद में हो जाएगा ऊपर तो फिर उसका उपशम सम्यक्त होगा। जैसे हमने एक प्रकृति में गैप देखा था वैसे यहाँ तीनों में मिलकर गैप हो जाती है।
अभी आपने यहाँ मूल बात क्या चल रही है, जो ब्लू लाइन दिखाई है ना, उसके नीचे का जो कोई
ये जो काल
भाग
है
उस समय उस जीव को क्षोभशम सम्यक तो होता है, होगा तो उस समय उसको क्षायिक सम्यक तो नहीं होगा, उपशम सम्यक तो नहीं होगा। इसलिए उस काल को अगर सम्यक तो कोई भी नहीं हो तो उसको वेदक योग्य काल कहते हैं। और वो जो लाइन बताई है आपको, जो बाकी के एक सागर स्थिति बाकी है, उस वक्त अगर वह जो पुरुषार्थ करे और सम्यक तो करने की कोशिश करे तो उसको दोबारा उपशम सम्यक तो होगा। ऐसा दोबारा तीन बार चार बार फिर भी उसको प्रथम उपशम सम्यक तो ही कहेंगे। और ऐसा कितनी बार हो सकता है तो कहते असंख्यात बार। वो असंख्यात का कौन सा नक्की असंख्यात है तो पल्ल्य के असंख्यात वे भाग जितना असंख्यात बार। यानी ये सब जीव करते हैं ये बात तो नहीं है, हमने आपको बता दिया है, ख्याल में है ना। अब यहाँ क्या बताना चाहती है वह कि वो जो ऊपर का भाग है उसी समय उसको उपशम सम्यक तो होगा और निचला जो बड़ा भाग दिखाया है उसमें
इतने काल में वेदक सम्यक
इतने काल में होगा सम्यक तो क्षोभशम सम्यक होगा। इसलिए यहाँ क्या बताया है, चार चीजें हैं, कौन कौन सी, एक उपशम सम्यक्त्व, एक क्षोभशम सम्यक्त्व और एक अनंतानुबंधी का विसंयोजन और चौथा है देशव्रत। अभी उसकी बात नहीं ली हमने, यहाँ बताई नहीं है। तो ये सारी बातें कोई जीव ग्रहण यानी उसको अटेन करेगा, ग्रास्प करेगा और उसे गिर जाएगा, कितनी बार हो सकता है, बस ये बात यहाँ बतानी है। है तो दो ही लाइन लेकिन बताते बताते दो दिन गए ना, और हम सोचते कि आप समझ गए हैं, आप नहीं थे ना कल, ये कल भी बात बताई थी लेकिन आज सामने पार्टी रख के और आसानी से। अब देखो उपशम सम्यक दर्शन पेज नंबर 36 गुरुदेव के जो अभी प्रवचन है उससे चालू करते हैं। उपशम सम्यक दर्शन कोई जीव ने असंख्यात वार आवे छे अने असंख्य वार छूटे छे, असंख्य वार ज लिखा है उधर, कोई ने क्षोभशम सम्यक्त्व पण असंख्य पार आवे छे, कोई जीव ने क्षोभशम माथी क्षायिक थई जाए, तो मुझे ऐसा पूछना है ये उपशम सम्यक्त्व और क्षोभशम सम्यक्त्व असंख्य बार ग्रहण करेगा और असंख्य बार टूट जाता है, वैसा क्षायिक सम्यक्त्व असंख्यात बार जाएगा कि संख्यात बार? छूटेगा नहीं, बहुत अच्छा, यही हम चाहते हैं कि आप इतना तो समझ गए ना, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व तो क्यों नहीं छूटता है, क्योंकि उदय होने के लिए वो सात प्रकृतियां रही नहीं ना, उनका उसने क्षय कर दिया, नाश कर दिया, इसलिए तो उसको क्षायिक सम्यक्त्व तो कहेंगे। इसलिए कहते हैं उसका एक बार प्राप्त किया छूटने का सवाल ही नहीं। इसी न्याय से कोई जीव आठों ही कर्मों का नाश करता है और मुक्त अवस्था प्राप्त करता है तो दोबारा संसार में क्यों नहीं आता है, क्योंकि कर्म ही नहीं ना भाई, कि जिसके कारण नाम कर्म होता तो कम से कम शरीर तो मिलता, वो भी नहीं है, तो ऐसा जीव दोबारा संसार में नहीं आता। और जो ऐसा मानते हैं क्या, यदा यदा ही धर्मस्य क्या है, हाँ वो सब आप जानते हैं ना, यानी कोई ऐसा यहाँ खोटा प्रसंग आ गया तो सबको सुधारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कहाँ गए उनके कर्म, कहाँ थे वे, मोक्ष में थे क्या स्वर्ग में थे, यानी कोई आगा पीछा नहीं है। लेकिन अपना जैन दर्शनों का जो सिद्धांत है उसको किसी भी प्रकार से हम बाधित नहीं कर सकते, यानी उसको टर्न आउट नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते कोई नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि एक बार क्षायिक सम्यक तो हो जाए तो दोबारा फिर उसको और सम्यक तो करने की जरूरत है, वो है वो परमानेंट। तो क्या कहा सेकंड लाइन, कोई जीव ने क्षोभशम माती क्षायिक थई जाए असंख्यात वार उपशम सम्यक तो वगैरह आवानु कहूं छे ते तो उत्कृष्टतानी अपेक्षाएं कथनचे। तो मिनिमम कितनी बार हो सकता है? हाँ प्रभावेन, उपशम सम्यक तो मिनिमम कितनी बार हो सकता है? भाई साहब आप बताएं। हाँ एक बार तो होना ही चाहिए, नहीं एक बार भी हो सकता है ऐसा कहो। हाँ 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 देखो ऐसा होता है कि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है उसको पहली बार तो उपशम सम्यक तो ही होगा, और हमने देखा सुना है शास्त्र का आधार है वो। भाई देखो जो नित्य निगोध बादर निगोध वाला कोई जीव होगा तो वहां से निकलकर मनुष्य पर्याय में आवे, मनुष्य पर्याय में वो तो अनादिकालीन निगोध में था, वहां से आया इधर और वहां क्या हुआ, मनुष्य पर्याय प्राप्त की और उसी भव में मोक्ष चले गया। तो पहले तो उपशम लेगा ही लेगा, बाद में क्षयोपशम होगा, गिरेगा नहीं, या गिरेगा फिर भी क्षयोपशम लेगा, फिर बाद में क्षायिक होगा। इस तरह से अपने को आगम का भी आधार है इसके पीछे। तो क्या कह रहे देखो भावार्थ, ये तो जस्ट ऐसे मैंने पूछा, वैसे क्षयोपशम सम्यक्तों के बारे में भी हो सकता है, एक ही बार लिया है और फाइनल हो गया उसका। भावार्थ पल्यना असंख्यात्मा भाग प्रमाण जे असंख्यात छे, ये प्रमाण बताया हो। तेटली बार उत्कृष्टपणे ऊपरना चारे ने आजीव, ये चार कौन से हैं याद है भाई? हाँ 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 वी संयो, जरा एक मिनट जोर से बोलो, ज न या ज क? क्या बोले अभी? जन कहना है ना आपको? हाँ तो हम तो संयोजक याद कर रहे हैं। हाँ वी संयोजन, आगे देशव्रत यानी पंचम गुणस्थान। देखो भाई पंचम गुणस्थान, और हमारे भाई साहब कहते हैं उसको तो थोड़ा कंसेशन करो, असंख्यात नहीं कम से कम संख्यात बार तो गिराओ। अरे हमारे हाथ में थोड़ी है वो तो कोई जीव ऐसी भाई करतूत करता है कहो, ऐसा खोटा पुरुषार्थ करता है कहो कि बेचारा बार बार आता है बार बार चला जाता है, यानी अभी उतनी स्थिरता दृढ़ता आई नहीं है। नहीं भाई चौथा गुणस्थान नहीं, पांचवे गुणस्थान की बात है, ख्याल में आया? तो क्या कहा देखो, पल्लेना असंख्यात्मा भाग प्रमाण जे असंख्यात छे, ये असंख्यात का प्रमाण भी बता दिया उन्होंने। तेटली वार उत्कृष्टपने ऊपरना चारे ने आजीव ग्रहण करे तथा छोड़े ते पछी मुक्ति प्राप्त थाय छे, वो भी गारंटी लिख दी। यानी आपको बहुत दुख होता हो, जैसा हम टीवी में देखते हैं वहां कुछ एक दूसरे को तकलीफ करते हैं, जो गरीब बेचारा कोई होता है उसके प्रति हमको दया आती है, आंखों से पानी आता है, दयालु है ना हम लोग, वैसा ही असंख्यात बार गिर गया हमारे आंखों में पानी आए, वैसे चिंता नहीं करो उसको हम भेज देंगे, कोई भेजता नहीं हो। तो कह रहे हैं पछी मुक्ति प्राप्त थाय छे, ए प्रमाणे सात प्रकृति ना उपशम क्षय અને ક્ષયોપશમ થી ઉત્પન્ન થયેલું સમ્યક્ત્વ કેવી રીતે જાણી શકાય, એવા તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનને નવગાથા સૂત્રો દ્વારા કહે છે। અભી ઇસકો ઉપશમ કૈસા કહેના, ક્ષય કૈસા કહેના, ક્યું કહેના, ઉસકે બારે મેં વો નવ ગાથાઓ કે માધ્યમ સે। અભી ભાઈ રોજ રોજ ઇતના ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક આ રહા હૈ તો આપકો રોજ આને કા મન હો રહા હૈ કે નહીં? અભી ગુલટી મત મારના ક્યા। हाँ ये प्रमाणे
यानी ये सम्यक तो क्या है उसको भी बताएंगे, जिसको हम सत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहते हैं उसकी बात अभी इन गाथाओं में बताएंगे। देखो यहाँ लिखा है ए प्रमाणे सात प्रकृति ना उपशम क्षय अनेक क्षयोपशम थी उत्पन्न थयेलु सम्यक्त्व, यानी सम्यक्त्व के बारे में, वो भले क्षायिक हो क्षयोपशमिक हो या उपशमिक हो, तो केवी रीते जानी शकाय किसी के सम्यक तो है कि नहीं है, वो किस तरह से समझ सकते हैं? तो एवा तत्वार्थ श्रद्धान्ने, यानी तत्वार श्रद्धान से जान सकते हैं, जिसको तत्वार श्रद्धान है वो सम्यक दृष्टि है। तो वो तत्वार श्रद्धान क्या है उसको भी नौ गाथाओं के द्वारा यहाँ बताएंगे। हम गाथा 311 और 12 दोनों ही पढ़ेंगे।
युगल
पहले लाइन में जो है ना, यह तत्वम अनेकांतम चाहिए, तत्वम जैसे ना वैसे अनेकांतम अभी पढ़ेंगे हम। यह तत्वम अनेकांतम
नियमाश्रद्धाति सप्तभंगैहि लोकानां प्रश्नवशतः व्यवहार प्रवर्तनार्थं च यः आदरेण मन्यते जीवा जीवादिनवविधम् अर्थम् श्रुतज्ञानेन नयैः च सह सदृष्टि भवेत् शुद्ध।
ये 311 गाथा में व्यवहार प्रवर्तनार्थम चाहिए ना,
नार्थम ही है।
हाँ, वो थो का
ये तो बिंदी पहले आई है, वो बाद में चाहिए,
इसलिए मैं खुलासा करवाया कि वो है प्रवर्तनार्थम ही चाहिए। लेकिन आपने कुछ गलत अलग पढ़ा था, कोई बात नहीं, आपने ऐसा पढ़ा था प्रवर्तनार्थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी कंफर्म नहीं था इसलिए कंफर्म करवा
दिया। वो प्रवर्तनार्थम है।
उसकी बिंदी राइट साइड में करके लेफ्ट वाले को हटा दो, बस बात खत्म।
देखो ये क्या, इसका अर्थ देखते हैं। यह यह इन्हें जो
क्या
इन्हें जो पुरुष क्या करता है, वो अनेकांतम तत्वम नियमात श्रद्धाति, अनेकांत तत्व को नियम से उसका श्रद्धान करता है। तो ये अनेकांत का किस प्रकार श्रद्धा करता है, तो कहते लोकानाम प्रश्न वशतः सप्त भंगई ही, लोगों के प्रश्न के वश वो सात भंग के द्वारा उसका कथन करता है, उसको जानता है। कथन में नहीं, यहाँ तो जानने की बात है, श्रद्धने की बात है। तो सात ही भंग होते हैं प्रश्नवश, अस्ति नास्ति, जिसको विधि और निषेध कहते हैं। विधि यानी अस्ति और निषेध यानी उसको खंडन करना, नास्ति। तो उसके सात भंग होते हैं। क्यों सात भंग होते हैं, तो हमारे पास तीन बातें हैं, एक है अस्ति, एक है नास्ति और एक है अवक्तव्य। अवक्तव्य का अर्थ होता है अस्ति भी है वहाँ, नास्ति भी है, दोनों एक साथ बता नहीं सकते, उसको अवक्तव्य कहा। कुछ भी कह नहीं सकते उसको अवक्तव्य नहीं कहा, क्योंकि कुछ भी कह नहीं सकते ये भी कथन ही हुआ ना उसके बारे में, समझ में आया? ये पेन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, तो इतना तो कह दिया ना कि कुछ नहीं कह सकती, तो ये भी उसके लिए वक्तव्य हो गया। इसलिए कहते हैं ये अवक्तव्य का अर्थ क्या है, एक साथ अस्ति और नास्ति दोनों का कथन नहीं होता। हमारे दो बच्चे हैं, एक रीना एक मोना है, किसी ने पूछा उनके नाम क्या है, हम क्रम से तो बता सकते हैं, एक साथ नहीं बता सकते, इसलिए वो कहेंगे अवक्तव्य है। यहाँ इतना ही अवक्तव्य का अर्थ है। तो हमारे पास तीन बातें कौन कौन सी है तेजर? बहुत अच्छा, अस्थि, नास्ति और अवक्तव्य, उसको हम ए बी और सी कहेंगे। हमें इसके अभी कॉम्बिनेशंस चाहिए, ए बी और सी के लिए कितने कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो पहले हम तीनों को अलग अलग लेंगे, अकेले ए को, अकेले बी को और अकेले सी को। तो ये कितने भंग हुए, कितने पॉसिबिलिटीज हुए, तीन हुए। अभी हमको दो दो के कॉम्बिनेशन लेने हैं, तो पहले से शुरू करते हैं ए से और आगे वाले के साथ उसके कॉम्बिनेशन लेना है। तो ए सी, सॉरी ए बी, ए सी और बी सी, यानी द्विसंयोगी कहते हैं, दो दो की जोड़ी करेंगे तो भी तीन हुए। पहले कितने थे?
दोनों का संयोग किया इसलिए उसका नाम द्विसंयोगी।
दो का कॉम्बिनेशन है,
तीन कॉम्बिनेशन ऑफ टू तो त्रिसंयोगी ऐसा।
तो हमने सिंगल रखा तो तीन हो गए, डबल डबल लिया तो भी तीन हुए, अब तीनों को एक साथ लेंगे तो एक ही होगा एबीसी वाला, उसमें तो और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। तीनों को लिया ना हमने तो कितने भंग हुए? सात। पहले तीन सिंगल वाले, डबल वाले तीन, और तीनों को ट्रिपल लिया तो एक हुआ, तो सात हुआ। कोई भी तीन का कॉम्बिनेशन करना है तो सात ही होगे, उससे अधिक नहीं होगे। इसलिए यहां कहते हैं सप्त भंग। ख्याल में ये बात? तो यहां कहते हैं कि जो ये लोगों के जो प्रश्न है वो अस्थि नास्ति के बारे में अगर हम प्रश्न उत्तर के रूप में भी देखेंगे तो वस्तु है नहीं है, फिर उसमें अपेक्षा भी लगाएंगे ना, और एक साथ दोनों को बता नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य। फिर अस्थि नास्ति करेंगे, अस्थि अवक्तव्य कहेंगे, नास्ति अवक्तव्य कहेंगे, जैसे हमने ए बी ए सी और बी सी कहा था, और फिर अस्थि नास्ति अवक्तव्य एक साथ सबको ले लेंगे। तो ये सात भंग होते हैं। और क्या होता है? व्यवहार प्रवर्तनार्थम च, यानी जो अनेकांत तत्व को श्रद्धा करता है सप्त भंगों के द्वारा। क्यों सात भंग? क्योंकि प्रश्न के वश से सात ही भंग होते हैं उसके कॉम्बिनेशंस। और जो व्यवहार प्रवर्तन जो है, व्यवहार में जो प्रवर्तन करते हैं ना, वो बिहेव करते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, उसमें तो ये सात भंग लगते हैं। ये एक बात हुई, सप्त भंगों के द्वारा अनेकांत तत्व को जानता है, यानी जानता है, इसमें श्रद्धा की बात है ना, क्योंकि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन है, तो श्रद्धा की अपेक्षा से उसकी मुख्यता से बात की है। अब दूसरी क्या है? यह आदर है न मन्यते। अभी यह और सह, जो जो ऐसा ऐसा करता है वह सम्यक दृष्टि है। तो पहले गाथा में जो श्रद्धान करता है, कैसे? अनेकांत तत्व का श्रद्धान करता है, कैसे, किस द्वारा? तो सात भंगों के द्वारा। जो सात भंगों के द्वारा अनेकांत वस्तु को, अनेकांत तत्व को श्रद्धा करता है, सह शुद्ध सदृष्टि भवेत, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। अब दूसरी गाथा में और एक बात बता रहे हैं, यह फिर दिया ना, जो आदरेन मन्यते, आदर के साथ यानी प्रयत्न के साथ उद्यम सहित क्या करता है? मानता है, यानी श्रद्धान करता है। किसका? जीवा जीवादि। जीवा जीवादि करते थे जीव और अजीवादि, आदि में और क्या क्या लेंगे आगे सुनना। जीवा जीवादि नवविधम अर्थम, विध यानी प्रकार, नौ प्रकार के अर्थ। कल किसने बताया था, पूछा था पदार्थ? वो मंजू बहन ने पूछा था ना, सात तत्व और नौ पदार्थ, पदार्थ क्यों कहते हैं, यह नौ अर्थ कहाँ है ना, किसी को पता है ये जीवा जीवादि नौ अर्थ कौन से होते हैं? बोलो। हाँ, जीव अजीव, हाँ, आश्रव बंध, पुण्य पाप, संवर निर्जरा और मोक्ष। यहाँ अभी हम पदार्थ कह रहे हैं ना, अब उसको तत्व कहे तो कोई वांदा नहीं, वहां नौ तत्व भी कहते हैं, परंतु यहाँ अर्थ कहा, पदार्थ कहा, तो हम उसकी बात करेंगे, जीव नाम का पदार्थ, अजीव पदार्थ वगैरह। तो जो आदर सहित, यत्न सहित, उद्यम से जो मानता है, श्रद्धान करता है, किसकी? ये नौ पदार्थ होंगी। नौ पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा वो श्रद्धान करता है, वैसा ही अभिप्राय में, जो का त्यों श्रद्धान। कैसे होता है? ऊपर तो सप्त भंगों के द्वारा कहा था, अब यहाँ कैसे? श्रुत ज्ञानेन नयहि च, श्रुत ज्ञान के द्वारा तथा नयों के द्वारा जो जीवा जीवादि नौ प्रकार के अर्थों को आदर के साथ, उद्यम के साथ मानता है, यानी जानकर उसकी श्रद्धा करता है, सह सदृष्टि ही भवेत शुद्ध, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, होता है ना, है। अब यहां का अर्थ पढ़ेंगे हम। ते पुरुष यानी जो सम्यक दृष्टि है वो क्या करता है, ते पुरुष,
ये पुरुष का अर्थ आत्मा लेना,
हाँ, वो है जीव,
पुरुष नहीं लेना, नहीं तो स्त्री को हम अवॉइड करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना,
ते लिखा है परंतु ये जे चाहिए, क्योंकि जे पुरुष अभी उसका बताएंगे, फिर बाद में कहेंगे ते शुद्ध सम्यक दृष्टि से, जैसे यह और सह निकाले ना संस्कृत में, इसे जे पुरुष सप्त भंगों द्वारा अनेकांत तत्वों नियम थी श्रद्धान करे छे। अभी हमने ऊपर देखा था सात भंगों के द्वारा उसका अनेकांत वस्तु स्वरूप को श्रद्धान करता है, कारण के लोगों ना प्रश्नवश, यानी लोग अगर कोई पूछता है तो उसके प्रश्न के उत्तर में जवाब देने में विधि निषेध थी, विधि यानी अस्ति और निषेध यानी नास्ति, अस्ति नास्ति से वचन ना सात भंग थाय छे, यानी उसके प्रश्न के जवाब में जो वचन निकलेंगे तो उसमें सात ही कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, अभी हमने जो निकाले थे, यथा श्री राजवार्तिक सूत्र पांच कारिका पांच पृष्ठ ठकरो 24। ये राजवार्तिक क्या है, किसी ने सुना है कभी? हाँ बोलो लक्ष्मी बेन। हाँ, तत्वार सूत्र के ऊपर की टीका है, वन ऑफ द टीकास, वैसे राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, बहुत सारी टीकाएं हैं, है? तो उसमें सर्वार सिद्धि है, अभी हम कौन सी पढ़ रहे थे, अर्थ प्रकाशिका है, बहुत सारी है, तत्वार सार भी है, तो राजवार्तिक नाम की जो टीका है उसमें सूत्र नंबर पांच कारिका पांच और पृष्ठ उसके रेफरेंस बता दिया है, ये कहां से लिया उन्होंने बात, तो उसके लिए रेफरेंस दिया, ते थी यानी लोगों के प्रश्नवश सात ही भंग होते हैं, एक बात, ते थी व्यवहार प्रवर्तना अर्थे पण, इन्हें दोनों ही बात है ना, लोगों के प्रश्नवश तथा व्यवहार प्रवर्तन के लिए सात भंगों थी वचन नी प्रवृत्ति थाय छे। हम किसी के बारे में जो कोई वचन के द्वारा बात बताते हैं तो उसमें ये सात ही भंग हो सकते हैं। दूसरी क्या कंडीशन 312 गाथा में कहा था, जे पुरुष वरी जे, यहाँ जे लिखा ना, ये बराबर है, वरी जे ने जे पुरुष जीव अजीवादि नौ प्रकार ना पदार्थों ने, इन पदार्थों के नाम अभी अभी हमने देखे थे, जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, आश्रव पदार्थ, सबके आगे पदार्थ लगाओ, शॉर्ट में हम ऐसे बोल देंगे आश्रव बंध संवर निजरा, तो ये आश्रव बंध में पुण्य और पाप के और भेद करके बताया है उसको समझाने के लिए, उसको उसी में इंक्लूड करेंगे तो हम सात तत्व भी कह सकते हैं, डबल तो चाहिए, डबल तत्व ऊपर पहली लाइन में अनेकांत तत्वों नू, वैसे नू के ऊपर भी बिंदी चाहिए ना, हाँ देखिए क्या कहते हैं, तेथी व्यवहार प्रवर्तना अर्थे पण सात भंगोती वचन, ये हुआ था वचन ने प्रवृत्ति थाय छे, वरी जे जीवा जीवादि यानी जीव और अजीव आदि नव प्रकार ना पदार्थों ने श्रुत ज्ञान प्रमाण थी, श्रुत ज्ञान से जानता ऐसा लिखा था ऊपर, तो ये जो श्रुत ज्ञान कहा वो प्रमाण की बात है, प्रमाण और नयों के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है, सही ज्ञान जो है प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा होता है, तो यहाँ श्रुत ज्ञान को प्रमाण कहा, श्रुत ज्ञान प्रमाण थी अने तेना भेद जे नये तेना थी, यानी प्रमाण के द्वारा तथा नयों के द्वारा पोतानो आदर यत्न उद्यम थी, यत्न ने प्रयत्न उद्यम यानी उसमें पुरुषार्थ पूर्वक माने श्रद्धान करे ते शुद्ध सम्यक दृष्टि छे, जो ऐसा करता है वह सम्यक दृष्टि है, शुद्ध सम्यक दृष्टि, तो क्या क्या होता है, तो सप्त भंगों के द्वारा अनेकांत वस्तु स्वरूप को जानता है, ये सात ही भंग है क्योंकि लोगों के प्रश्नवश सात ही भंग होते हैं और व्यवहार प्रवर्तन के लिए भी सात भंग होते हैं। दूसरी कंडीशन, जो पुरुष जीवाजीवादि नौ पदार्थों का जो यथार्थ श्रद्धान करता है उद्यम पूर्वक, तो वह सम्यक दृष्टि है। भावार्थ, अब यहाँ जो भावार्थ है ना मूल में बहुत बड़ा है, इसमें से चार पांच लाइन यहाँ लिए हैं और बाकी दो तीन पेजेस का भावार्थ है वो आगे के लेक्चर में आएगा, आगे के प्रवचन दो पेज के बाद उसको ले लेंगे। जहाँ अभी जहाँ जितना है उतनों को ही हम पढ़ेंगे, उसका प्रवचन पढ़ेंगे, फिर रिमेनिंग भावार्थ हम जब भी उसका समय आएगा तभी देखेंगे। क्या कहते, देखो वस्तुनु स्वरूप अनेकांत छे। देखो अभी समय सार में भी परिशिष्ट में इसी की बात चल रही है, उसमें भी वो सारे तत् असत सत असत नित्य अनित्य एक अनेक वो सारे ही 14 प्रकार से उसमें भंग बताए हैं। तो वस्तुनु स्वरूप अनेकांत छे, अनेकांत का अर्थ क्या है आपको पता है? अनेकांत, अनेकांत किसको कहते हैं? शब्द कैसे तैयार हुआ? अनेक अंत, अनेक यानी जो एक नहीं है वो अनेक है, और अंत का अर्थ क्या है? धर्म। गुणों को भी कहीं कहीं अंत कहते हैं, यानी जीव जो है आत्मा है, प्रत्येक पदार्थ अनंत गुणों का समूह तो है ही है, परंतु यहाँ अनेकांत धर्मों में धर्म जो होते हैं ना नित्य अनित्य ये धर्म कहलाते हैं, एक अनेक तत् अतत इसको क्या कहेंगे? धर्म। जो हमें तो अस्ति नास्ति हमें तो लगता है उल्टे है, विरुद्ध है ना, ये अस्ति ने है पना और नास्ति ने नहीं पना, तो ये जो धर्म भाषित हो नहीं, विरुद्ध भाषित होने वाले ये जो धर्म है तो एक साथ एक वस्तु में रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अनेकांत स्वरूप। तो वस्तुनु स्वरूप अनेकांत छे, सभी वस्तुएं जो है द्रव्य जो है वो अनेकांतात्मक ही है। जेमा अनेक अंत अर्थात धर्म होए तेने अनेकांत कहे छे। देखो भावार्थ में बता ही दिया उन्होंने, ते धर्म अभी कौन कौन से है धर्म? ये अस्तित्व नास्तित्व एक ही वस्तु में है। हमें अचरज लगता है एक ही वस्तु अस्ति भी है नास्ति भी है, उसमें अपेक्षा लगा के दोनों ही धर्म सिद्ध करेंगे एक ही समय में। तो अस्तित्व नास्तित्व एकत्व अनेकत्व यानी एक पना अनेक पना, नित्यत्व अनित्यत्व ये तो हमने बहुत बार सुने ना, द्रव्य की अपेक्षा वो नित्य है, वही का वही का वही का द्रव्य है कायम, अनादि से वही का वही द्रव्य है, फिर भी अनित्य। पर्याय वही का वही वही नहीं है, पर्याय की अपेक्षा द्रव्य को ही अनित्य कहेंगे, पर्याय की अपेक्षा सर्वथा नहीं। हाँ तो ये उसका धर्म कहलाएगा। क्या कहते हैं? नित्यत्व अनित्यत्व भेदत्व अभेदत्व, यानी भेद अभेद पना हम देखते हैं, वस्तु भेद स्वरूप है कि अभेद स्वरूप है? बोलो वस्तु में भेद है क्या वस्तु अभेद है? हाँ ये यही देखो देखो एक ही वस्तु में भेदत्व भी है और अभेदत्व भी, ये हम अनेकांत सुन रहे हैं ना, तो वस्तु भेद स्वरूप है क्या अभेद स्वरूप है? तो दोनों स्वरूप है। गुणों के भेद करके कथन करेंगे तो हम कहेंगे भेद स्वरूप है, पर्यायों के भेद करेंगे तो कहेंगे भेद स्वरूप है, परंतु एंटिटी एक है, वो द्रव्य अनेक नहीं होते, द्रव्य में अनंत गुण है तो द्रव्य एक ही रहता है, वो अनंत नहीं हो जाता, तो उसको हम कहेंगे अभेद है। ये किस तरह से वस्तु को देखना है हमारे ज्ञान पर नय पर आंखों पर दृष्टि पर निर्भर है, आंखों ने ये आंखें नहीं। तो भेदत्व अभेदत्व
ज्ञान चक्षु,
हाँ ज्ञान चक्षु, अपेक्षत्व अनपेक्षत्व, दैव साध्यत्व पौरुष साध्यत्व। जब आप नए पढ़ेंगे अलग अलग, एक होता है दैव नए एक पुरुषार्थ नए वगैरह वगैरह, यानी कोई वस्तु है कोई कार्य है वो दैव से होती है कि पुरुषार्थ से होती है? आप कहेंगे क्या कहते, पुरुषार्थ बिना थोड़े होते हैं, तो एक ऐसा नय कहेगा वहां दैव से होता है, तो ये दोनों ही नयों से वहां घटित होता है। हेतु साध्यत्व आगम साध्यत्व, अब ये हेतु और आगम ये तो न्याय की भाषा है ना, अंतरंगत्व बहिरंगत्व इत्यादि तो सामान्य धर्म छे तथा द्रव्यत्व पर्यायत्व जीवत्व अजीवत्व स्पर्शत्व रसत्व गंधत्व वर्णत्व ये क्या है ये विशिष्ट द्रव्यों में पाए जाएंगे
द्रव्यत्व को
जैसे जीवत्व जो है
हाँ द्रव्यपना और पर्यायपना द्रव्यत्व और पर्यायत्व बराबर
पर्यायपना हो जाएगा ना उसका विशेष मैंने किसी विशेष द्रव्य को नहीं लेना है पर द्रव्य का द्रव्यपना लेना है और पर्यायपना लेना है स्पर्शत्व रसत्व गंधत्व वर्णत्व शब्दत्व शुद्धत्व अशुद्धत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व संसारित्व सिद्धत्व अवगाहत्व गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व वर्तना हेतुत्व इत्यादि विशेष धर्म छे ये तो भावार्थ की बात हुई है अनेक धर्मों के यहाँ नाम बताए अब इतने भावार्थ पर पहले हम प्रवचन पढ़ेंगे फिर आगे की बात करेंगे
यहाँ पर विशेष रूप से तो पहले धर्म बताए हैं और उनको सामान्य धर्म कहा है और जो आगे के जो बताए हैं तथा वर्तना हेतुत्व के बाद विशेष धर्म है यानी सामान्य धर्म का अर्थ ऐसा लेना कि ये सामान्य धर्म प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं और जो विशेष धर्म है वो कोई पर्टिकुलर द्रव्य में ही पाए जाएंगे तो यहाँ पर ऐसा दिया है संसारित्व और सिद्धत्व ये धर्म कौन से द्रव्य में पाया जाएगा आप बताएंगे संसारित्व या सिद्धत्व ये दो धर्म कौन से द्रव्य में पाए जाएंगे एक तो हाथ उठ गया पहले से मम्मी बोल रही है बोलो 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 जीव द्रव्य में हाँ कोई बात नहीं सोचना तो जरूर उत्तर मिलेगा अब मेरा ये प्रश्न है अवगाहनत्व कौन से द्रव्य में धर्म है हाँ कौन बताए आप ही बताए नहीं दूसरा कोई बतावे ना हाँ डॉक्टर साहब हाँ आकाश द्रव्य का वह विशेष धर्म है अभी आगे के दो तीन आसपास की आप बताना भैया जैसा मैं पूछूंगा गति हेतुत्व धर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य बहुत अच्छा इस तरह से यहाँ जो जो लिखते हैं ना तो ये देखो क्या कहा ये द्रव्यत्व और पर्यायत्व ये भी विशेष द्रव्य विशिष्ट द्रव्य का द्रव्यत्व लेना फिर जीवत्व हो तो जीव द्रव्य में होगा अजीतत्व यानी अजीव द्रव्य में होगा स्पर्शत्व कौन से द्रव्य में होगा फिर उद्गल स्पर्शत्व रसत्व गंधत्व वर्णत्व शब्दत्व ये सब कैसे हैं हाँ यानी उद्गल के विशेष धर्म है
ये भावार्थ में यहाँ तो द्रव्यत्व पर्यायत्व लिया है आगे आगे स्वामी जी ने इनको सामान्य धर्म है
हाँ, वही तो मैं जभी आपसे बोला लेकिन तो फिर यहाँ अभी देखो देखो शुद्धत्व और अशुद्धत्व कौन से द्रव्य में होगा प्रभाव इन बताएंगे आप है? फिर से प्रश्न पूछूंगा यहाँ जो नीचे से दूसरे लाइन में लिखा है ना ये गंधत्व वर्णत्व शब्दत्व के बाद शुद्धत्व और अशुद्धत्व ये कौन से द्रव्य में एप्लीकेबल होगा बहुत अच्छा जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में अन्य द्रव्यों में क्यों नहीं बापा हाँ आपका कहना है अन्य द्रव्य शुद्ध रूप से ही परिणत होते हैं उनमें अशुद्धत्व होता ही नहीं है इसलिए ये दोनों दोनों में इसलिए उसको विशेष धर्म में डाला जैसे हमने देखा क्रियावती शक्ति यानी क्या होता है गति रूप या स्थिति रूप परिणमन करने वाले दो ही द्रव्य है इसलिए उसको विशेष धर्म गुण भी कहा और दोनों की अपेक्षा से सामान्य भी कहा अभी आगे बढ़ते हैं अर्थ जे पुरुष ते वाला है ना, उसको जे कर देना। सप्तभंगों द्वारा अनेकांत तत्वों, ये डबल तो चाहिए, नियम थी श्रद्धान करे छे, कारण के लोगों ना प्रश्नवश विधि निषेध थी वचनना सातज भंग थाय छे। ये तो हमने पढ़ लिया था, इसलिए केवल पढ़ता ही हूँ। अभी तो इसके बाद बहुत अच्छी हुई थी, जो श्री राजवार्तिक सूत्र 5 कारिका 5 पृष्ठ 24 तेथी व्यवहार प्रवर्तना अर्थे पन सप्त भंगो थी वचननी प्रवृत्ति थाय छे। यानी हम लौकिक में भी ऐसे ही ये सप्तभंग का इस्तेमाल करते हैं। वड़ी जे जीव अजीव आदि नव प्रकारना पदार्थों ने श्रुत ज्ञान प्रमाण थी अने तेना भेद जे नये तेना थी। ये नये किसके भेद बताए? हाँ बेन, ये नये जो है किसके भेद बताए अभी यहाँ? श्रुत ज्ञान, बहुत अच्छा। श्रुत ज्ञान कैसा लिया? प्रमाण श्रुत ज्ञान, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक श्रुत ज्ञान। अने तेना भेद जे नये तेना थी पोतानो आदर, यानी पोतानो यानी जीव द्रव्य का अपना स्वयं का आदर, यत्न और उद्यम थी माने श्रद्धान करे ते शुद्ध सम्यक दृष्टि छे। ये शुद्धा हो गया है। जो आ गाता घनी अलौकिक छे, अध्यात्मनु रहस्य तेमा मुकी दीधु छे, तत्व अनेकांत स्वरूप छे, एटले के जीव जीवपणे छे, जीव अजीवपणे नथी। अस्थि नास्ति की बात घटित की ना, एम अस्थि नास्ति आदि सप्तभंगी वड़े अनेकांत तत्व ने, ये तत्व जहां जहां आधा है ना वो डबल करना, तत् और त्व ये दोनों मिलकर तत्व होते हैं। नियमती श्रद्धे छे ते जीव सम्यक दृष्टि छे ने तेमा भूल होए तो ते मिथ्या दृष्टि छे। अभी यहां उन्होंने एक जो बात, यहां का विषय नहीं है फिर भी हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं पूछूंगा, ये अस्ति नास्ति के जो सात भंग है वो कौन बताने की कोशिश करेगा? सबको अलाउड है? ओ 1 2 3 ये तो है ही, 4 आप, 5 आप भी बताएंगे? अरे वाह, आप नहीं बताना चाहती हैं, नाराज है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी हम हमारी लक्ष्मी बहन को पूछते हैं, क्योंकि बोलते हमको कभी बोलते ही नहीं आप, तो चलो आप बोलो साहब। स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, स्यात अवक्तव्य, हाँ देखो, आपने ऐसा बताया कि स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, स्यात अस्ति नास्ति, स्यात अवक्तव्य, तो ये डबल वाला हमने पहले लिया समझने के लिए। वैसे कहा भी जा सकता है कि स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, स्यात अवक्तव्य, और स्यात अस्ति नास्ति चौथा हो गया, पांचवा हो गया स्यात अस्ति अवक्तव्य, और छठा हो गया स्यात नास्ति अवक्तव्य, और सातवां हो गया स्यात अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सात भंग है, वो जो सही रूप से याद करेगा नहीं समझेगा वो तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा भाई। और हमको तो नाम तक याद करने में तकलीफ लगती है कभी कभी, अभी नहीं पहले। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं ते श्रद्धान करे ते शुद्ध सम्यक दृष्टि छे, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें ये सात भंग किस तरह से कहे जाते हैं, उसका क्या अर्थ हो सकता है, इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए जब गुरुदेव कहते आ गाता घनी अलौकिक छे, अपने को लगता है कौन सी भी गाथा है तो ऐसा ही बोलते हैं, इनकी स्टाइल लगती है। अरे नहीं प्रभु, तेरे को उसके अंदर का माल ख्याल में नहीं आता है। जो ये बात को समझेगा वो तो एकदम खुश खुश हो जावे, और गुजराती में बोलना हो तो मजा पड़े। अरे आचार्य लोग तुमको मजा कराने के लिए बुलाएंगे यहाँ? घनी मजा आवे यहाँ दिनेश में, आज बहुत मजा आवे। अरे हम क्या नाटक तमाशा कर रहे हैं मजा लाने को? यहाँ तो तत्व की बात बताए। फिर मेरे को समझा कि बहु मजा आवी का अर्थ हमको बहुत संतोष हुआ। मैंने कहा आपको बढ़िया बढ़िया, वही संतोष हुआ आनंद हुआ एक ही बात है ना। अभी क्या कह रहे, देखो तत्व अनेकांत स्वरूप छे, एटले के जीव जीवपने छे, जीव अजीवपने नथी। एम अस्ति नास्ति आदि सप्तभंगी वडे अनेकांत तत्व ने नियमती श्रद्धे छे ते जीव सम्यक दृष्टि छे। अभी जे श्रद्धे छे तो हमें श्रद्धान करना चाहिए क्या नहीं? हाँ भाई, किसका श्रद्धान करना चाहिए? हाँ बोलो। आप बोलते सात तत्वों का, आप बोलते सप्तभंगों का, नक्की करना भाई दोनों का। यहाँ तो सप्तभंग की बात चल रही ने, तेमा भूल हो तो ते मिथ्या दृष्टि छे। ये श्रद्धान की बात है, ओ याद करना नहीं करना की बात नहीं है। वही धर्मीनी वाणी मा पण अनेकांत स्वरूप तत्व जावे। आत्मा आत्मापणे छे अने आत्मा कर्मपणे नथी, राग राग बने छे ने कर्मपणे नथी। आम बधा तत्वों ने जेम छे तेम प्रतीतमा लिए तेमज लोक व्यवहार मा पण एज प्रमाणे कहे। ये जो जो दोनी जगह अलग निकालना। प्रश्नवशे जीवादि तत्वों मा सप्तभंगी द्वारा कथन करे ते स्यादवाद छे। स्यादवाद ने कथनचित, किसी अपेक्षा से कथन करना, उसको वाद याने कथन करना, वाद याने वाद विवाद करना नहीं। अनेकांत स्वरूप नु प्रतिपादन करे त्या दरेक जीव अनंत गुण रूप ध्रुव पर्याय थी अभेद त्रिकाल अंत तत्व छे। तेमा पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंद मोक्ष रूप क्षणिक पर्याय नो अभाव छे ने पुण्य पाप आश्रव वगैरे पर्याय ते काले ते पणे छे पण तेटलो जीव नथी। क्योंकि वो तो पर्याय तत्व है ना, तो पर्याय जेटलो जीव नथी एम के छे। एम जीवादी ने शुद्ध ज्ञान प्रमाण थी तथा तेना भेद जे निश्चय निश्चय न व्यवहार न तेना वडे पोताना आदर यत्न थी माने जाने छे ते शुद्ध सम्यक दृष्टि थाय छे। जीव अजीव पुण्यादि नव पदार्थ ने पृथक पृथक जाने एक तत्व मां हमेशा तो आधा लिखा बीजाने न भेड़वे पृथक पृथक लक्षण थी अनेकांत थी जाने तो यथार्थ जानियों के वाय। भाव अभी पहले तो यहाँ भाव आश्रव व कोई द्रव्य आश्रव वगैरह बात नहीं बताई थी। भाव आश्रव संव निर्जरा बंद मोक्ष ए जीवनी एक समय नी पर्याय छे तथा द्रव्याश्रव बंद वगैरह निमित्त रूपे पुद्गलनी एक समय नी पर्याय छे। भावार्थ वस्तुनु स्वरूप अनेकान छे, एक द्रव्य छे ते एक गुण रूप नथी, एक गुण छे ते बीजा गुण रूपे नथी, पोता रूपे छे अन्य रूपे नथी। ये समझ में आ रहा है क्या? ख्याल में आता है ना? एक पर्याय छे ते पूर्वनी ने पछीनी अन्य पर्याय रूपे नथी, छे ते बीजाती नथी। क्या कहा? जो कोई है वह दूसरे के कारण से नहीं है, दूसरे रूप नहीं है। अभी मान लो ये सोफा है तो वो दूसरा, कारपेट नहीं है, दीवार नहीं है, पंखा नहीं है, ये पर्दा नहीं है, पण ये बीजा थी पण नथी एम के छे, એટલે दूसरे के कारण से वो है। अरे वो कारपेंटर ने तो बनाया कि नहीं, तो कहते नहीं बीजा थी नहीं, पोता रूपे छे ने अन्य रूपे नहीं, एक बात, अने छे ते बीजा थी नहीं, ए रीते जेमा अनेक अंत अर्थात धर्म होय तेने अनेकांत कहे छे, ते धर्म छे, अस्तित्व नास्तित्व एकत्व अनेकत्व, अस्तित्व याने है पना, नास्तित्व याने नहीं पना, एकत्व याने एक पना अनेक पना, नित्यत्व याने हमेशा टिके रहना और अनित्यत्व याने क्षण क्षण में बदलना, भेदत्व और अभेदत्व वगैरह रूपे चे कौन प्रत्येक द्रव्य, जे धर्म जे अपेक्षाएं छे तेज धर्म बीजी अपेक्षाएं नथी, द्रव्य सामान्यपने नित्य अभेद शुद्ध छे ते पर्याय थी पन एमज छे एम नथी, तो पर्याय थी कैसा होगा, अनित्य छे भेद छे अने अशुद्ध छे, दरेक धर्म पोताती छे पर थी नथी, आश्रव छे ते जीव थी भिन्न छे के अभिन्न छे, कौन उत्तर देगा, प्रभावेन आप बोलेंगे, क्या पूछा, आश्रव छे ते जीव थी भिन्न छे क्या भिन्न छे, हे हे हाँ, डॉक्टर साहब आप बताएंगे, देखो अभी आपने दोनों ने उसी पर जोर किया है, अभी यहाँ क्या लिखते हैं देखेंगे, हम तो उत्तर ऐसा देना चाहिए, हाँ हाँ अभी हम तो यहाँ क्या पूछा है, आश्रव छे ते जीवती भिन्न छे क्या भिन्न छे, भिन्ना भिन्न छे, ये हमारा उत्तर, यानी भिन्न भी है और अभिन्न भी है, तो वो कौन सी अपेक्षा से वो अभी हम देखेंगे, आपने तीनों ने एक ही उत्तर दिया है, अभी देखते हैं, हाँ फर्स्ट लाइन में लिख दिया है, बहुत अच्छा 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 अच्छा,
इन्होंने कहा ना द्रव्य अपेक्षा भिन्न, द्रव्य अपेक्षा भिन्न का अर्थ क्या, जीव द्रव्य की पर्याय है ना, वो द्रव्य अपेक्षा भिन्न का अर्थ आपने क्या किया, क्यों पर्याय, तो यहाँ द्रव्य अपेक्षा भिन्न कहे ना आपने, हाँ डॉक्टर साहब, तो द्रव्य अपेक्षा भिन्न कैसे कहा आपने,
आपने तो अभिन्नत्व बताया,
नहीं द्रव्य की अपेक्षा भिन्न कहा ना आपने, तो कैसे कौन सा द्रव्य है वो, ये तत्व अलग है, आश्रव तत्व को हम भिन्न करेंगे, परंतु वो है तो जीव की पर्याय, या भावाश्रव द्रव्याश्रव लिखना है तो भावाश्रव तो जीव के पर्याय में है और द्रव्याश्रव तो भिन्न द्रव्य है, और हम जो नव तत्व कहते हैं ना, तो आश्रव तत्व भिन्न है और जीव तत्व भिन्न है, तो यहाँ पूछा था ना जीव से भिन्न है कि अभिन्न है, हम तत्वों में देखना है, जीव तत्व भिन्न है और आश्रव तत्व भिन्न है, परंतु ज्ञान क्या करेगा, ये जीव की पर्याय में है ऐसा भी ज्ञान होगा ना वहां पर, तो उसको जीव की पर्याय में स्वीकार भी करेंगे, वहां पर दोनों ही घटित होगा,
अभी तो समय हो गया, कल इसके बारे में देखेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मकण मो सदा देत हो अमूल।